चंद्रिका भाषा टीका में हमारा भव्य मार्गणा का प्रकरण चल रहा है। अब भव्य मार्गणा में पांच प्रकार के संसार यानी जिसको पांच परिवर्तन कहते हैं उसका यहाँ स्वरूप बताया जा रहा है। उसमें से हमने द्रव्य परिवर्तन जिसको उद्गल परिवर्तन कहते हैं वो भी देखा, उसके पश्चात क्षेत्र परिवर्तन देखा। द्रव्य परिवर्तन यानी उद्गल परिवर्तन में हमने नौ कर्म द्रव्य परिवर्तन देखा कि जे पुद्गल परमाणु जिन स्पर्श यानी स्निग्ध रुक्ष स्पर्श रसादि सारे जो उनकी पर्याय है वे ही पुद्गल, वैसे ही स्निग्ध रुक्षांश वगैरह उसके साथ जब जीव दोबारा ग्रहण करेगा अपने शरीर रूप से उसके लिए अनंत काल जाना जाता है, उसके कहते हैं नौ कर्म द्रव्य परिवर्तन। वो कैसा अनंत काल जाता है उसका टेबल सारा हमने डिटेल में देखा था। दूसरा है कर्म द्रव्य परिवर्तन यानी एक समय में जीव अनंत कर्म परमाणु ग्रहण करता है उसको कहते हैं समय प्रबद्ध। तो एक समय प्रबद्ध में अनंत कर्म परमाणु है, किसी समय जीव ने आठों ही कर्म ग्रहण किए, आयु भी, आयु तो कभी कभी ग्रहण करता है ना, तो हमको वहां से मापना है कर्म द्रव्य परिवर्तन। तो जब वो आठों ही कर्म का ग्रहण करता है तब उन आठ कर्मों का ग्रहण हुआ तो जो पुद्गल परमाणु से वो कर्म बना था उन पुद्गल परमाणु में प्रत्येक में अपना अपना स्पर्श रस गंध वर्ण और जो सारे गुण है वो है, उसकी जो जो पर्याय है वे ही पुद्गल परमाणु, वैसे ही पर्याय के साथ जब जीव दोबारा ग्रहण करेगा तो उसको कहते हैं कर्म द्रव्य परिवर्तन। तो ये जो अनंत काल है तो ये एक द्रव्य परिवर्तन पूरा हुआ क्योंकि हमें यहाँ काल को नापना है, कितने द्रव्य पुद्गल लेता है छोड़ता है, वो गृहित है क्या अगृहित है, पहले लिए हुए कि नहीं लिए हुए, ये सारा क्यों हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें काल नापना है। जीव अनादि से है तो अनादि से है तो उसने कितना काल बिताया है, तो ये काल कितना बिताया है ये दर्शाने के लिए यहाँ द्रव्य परिवर्तन या क्षेत्र परिवर्तन काल परिवर्तन के द्वारा इसके माध्यम से हमें काल कितना गया उसको बताते हैं। उसके पश्चात क्षेत्र परावर्तन में, परावर्तन कहो या परिवर्तन कहो की बात, क्षेत्र परिवर्तन में हमने दो प्रकार से देखा था, एक स्व क्षेत्र परिवर्तन और पर क्षेत्र परिवर्तन। स्व क्षेत्र यानी जीव की अवगाहना यानी जिस शरीर में वो जीव है अभी वो शरीर कितनी जगह व्याप्त है उसको उसकी अवगाहना कहते हैं। तो हम कितने स्पेस में अभी है कोई जीव, हम कहते ना वो आदमी कितना लंबा है तो वो कितना लंबा है कितना चौड़ा है वो सारी उसकी उसका घनफल क्या है उसको बताते हैं। तो वैसे जीव की अवगाहना कितनी कितनी अलग अलग है, तो वो कैसे नापना क्षेत्र परिवर्तन, स्व क्षेत्र परिवर्तन। तो हमने जब जीव सूक्ष्म निबोध लब्ध पर्याप्त, जो सूक्ष्म में सूक्ष्म यानी उसकी कम से कम अवगाहना उस पर्याय में होती है, उस पर्याय से शुरू करेंगे हम क्षेत्र परिवर्तन को मापने के लिए। फिर वो उसके पश्चात उसके परिणामों के अनुसार जीव को कोई भी अन्य पर्याय मिली, तो वहां हो सकता है कि उसकी अवगाहना बड़ी है छोटी है कैसे भी है, कहीं निगोद से निकलकर कहीं जींद्रिया में उसमें गया, मनुष्य में गया या एक्सपीरियंस में गया, तो बीच में अलग अवगाहना मिलती है उसको नहीं काउंट करता, उसका काल तो नापना। परंतु जब दोबारा वो जघन्य अवगाहना से एक प्रदेश बढ़कर जब दूसरी अवगाहना जब कभी उसको प्राप्त हो जाए, भले बीच में अनंत काल भी क्यों न चला जाए, तब उस अवगाहना को हम मापेंगे। फिर ऐसे ही क्रम से एक एक प्रदेश बढ़ती हुई अवगाहना जब जब मिलती है तब तब उसको मापना। बीच में जो काल चला जाएगा, हजारों सालों का लाखों सालों का भी चला जाए, तो वो काल को नापना परंतु बीच वाले अवगाहना को कंसीडर नहीं कर। तो इसे क्रम से एक एक प्रदेश बढ़ती हुई अवगाहना मिलते 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 जब जीव को उत्कृष्ट अवगाहना जो महामत्स्य की अवगाहना है 12.5 करोड़ घन योजन, वैसे ये क्रम से आनी चाहिए। बीच बीच में अन्य अवगाहना होती है उसको कंसीडर नहीं करना। तो इस तरह से उत्कृष्ट जघन्य से लेकर उत्कृष्ट अवगाहना तक क्रम से जब वो जीव प्राप्त होगा तब उसका एक स्व क्षेत्र परिवर्तन पूरा हुआ। तो बीच में कितने अन्यत्र अन्य अवगाहना मिले तो उसको कंसीडर नहीं करना, उसकी काल तो नापना एक बार शुरू किया तो हमारी घड़ी तो चल रही है आगे काल की, परंतु वो दूसरा अवगाहना का भेद तभी कहेंगे जब एक प्रदेश बढ़कर आएगा। तो ये सारा हुआ स्व क्षेत्र परिवर्तन। अभी परक्षेत्र परिवर्तन में लेना कि जीव कहाँ जन्म लेता है, तो सबसे मापना हमने शुरू किया लोकाकाश के बीचों बीच जब यह जीव सूक्ष्म कोई जीव वहां उत्पन्न होता है, क्योंकि हमने देखा था ना कि सूक्ष्म जीव कहीं भी उत्पन्न होते हैं, लोकाकाश के बीचों बीच तो मेरु पर्वत का सेंटर है, तो वहां तो भूमि है, पृथ्वी का है, बादल पृथ्वी का है, परंतु वहां अन्य कोई भी सूक्ष्म जीव हो सकता है, सूक्ष्म निगोद भी वहां हो सकते हैं। पृथ्वी का है के आधार से नहीं, क्योंकि उनको कोई आधार की जरूरत नहीं होती है सूक्ष्म जीवों को, तो सूक्ष्म निगोद है या सूक्ष्म अन्य जो जीव है तो वहां सेंटर में जन्मा। कैसे कि लोकाकाश के मध्य 8 प्रदेश है और वहीं पर उसके बीचों बीच इसके भी अवगाहना के बीच वाले 8 प्रदेश उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए, वहां से शुरू करते हैं और बचे हुए प्रदेश तो आजू बाजू में फैलेंगे, परंतु इसके सेंटर के प्रदेश और लोकाकाश के सेंटर के प्रदेश वहां से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, तो वहां वो जन्मा, वहां अपनी आयु पूरी की। फिर दोबारा कहां जन्मा क्या क्या पता, बहुत काल बीत गया जब कभी उसके एडजेसेंट एक प्रदेश को अपना सेंटर बनाएगा शरीर का, या वहां उस प्रदेश को अपनी अवगाहना बनाकर वहां जन्म लेना, तब उसको काउंट करना वो हमारा होगा दूसरा जन्म। फिर अन्यत्र कहीं 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 जन्म लिया वो नहीं काउंट करना, काल को तो नापते रहना। फिर जब कहीं उसके बाजू वाला प्रदेश पर जन्मेगा उसको काउंट करना, ऐसे बाजू वाला करते 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 जितने प्रदेश है लोकाकाश में 343 घन राजू में जितने प्रदेश है, उस एक एक प्रदेश पर जब जीव अपने उस शरीर के अवगाहना रूप वहां उसको प्रदेश बनाकर वहां जन्मेगा, व्यापेगा उसको, और ऐसे पूरे प्रदेश पूर्ण हो जाएंगे तब उसका एक परक क्षेत्र परावर्तन पूरा हुआ। इतने अभी इतनी जगह में है उसको कितने बार जन्म लेना पड़ेगा, असंख्यात, क्योंकि सुई के नोक के ऊपर भी असंख्यात शरीर और एक एक शरीर में असंख्यात प्रदेश, तो ये पूरे लोकाकाश में उसके कितने जन्म, और वो भी क्रम से आने चाहिए। ऐसा नहीं कि अब कभी यहाँ जन्म लिया ये लोकाकाश ऐसा है तो कभी यहाँ जन्म लिया, कभी यहाँ जन्म, कभी यहाँ, ऐसे पूरे माप के लोकाकाश पूरा नहीं करना है, क्रम क्रम से उसका वो जन्म आना चाहिए। बीच में अन्यत्र जन्म लेता है उसको उसको काउंट नहीं करना, परंतु उसको काल गिनना। तो इस तरह से ये परक क्षेत्र परावर्तन वो पूरा करता है। तो ऐसे एक क्षेत्र परावर्तन पूरा करने में अनंत उद्गल परावर्तन जीत जाते हैं। नहीं नहीं देखो, पूरे होने की बात नहीं यहाँ, ये तो टाइम काउंट करने की बात है। हम उसको किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं उसकी यह बात है। और जैसे यहाँ कर्म और नौकर्म में स्पष्ट रूप से लिखा है, वैसे यहाँ यहाँ तो नहीं लिखा, अन्य कहीं पुस्तक में मिले तो हम देखना जरूर चाहेंगे, उसका अगर रेफरेंस मिल जाता है तो उसका पता नहीं क्या एग्जैक्ट उतना ही उसका काल है कि नहीं है। देखो ये 653 पेज पर आए थे हम, काल परिवर्तन के ऊपर 3-4 लाइन है, उसको फिर पढ़ती हूँ। क्षेत्र संसार विषय भ्रमण करता जीव, क्षेत्र संसार का इसको, ये इसका संसार, एक 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 प्रदेश पर जन्म मरण करता आया हो जीव करी, जाका अपने शरीर की अवगाहना करी स्पर्श न किया, यानी लोकाकाश का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है कि जहाँ इसने अपने शरीर से स्पर्श नहीं किया, वहाँ जन्म नहीं लिया, ऐसा सर्व जगत श्रेणी का घन प्रमाण लोक विषय कोई प्रदेश नहीं है। और हम भी अभी भी कहाँ, यहाँ घूमना वहाँ घूमना क्यों है ना, स्विट्जरलैंड में जाना कि अमेरिका में जाना कि कहाँ घूमना, तो लोकाकाश का एक भी प्रदेश बचा नहीं कि जहाँ हम जन्मे नहीं, सब घूम घाम के आए हैं, फिर भी अभी एक घूमने की अपनी चाह मिटी नहीं है। बहुरी जाको बहुत बार अंगीकार न किया, ऐसा कोई अवगाहना का भेद भी नहीं, सारे अवगाहना के भेद को भी इस जीव ने धारण किया। कोई छिंगू होगा तो उसको क्या लगता है, अरे मैं ऊंचा होता तो कितना अच्छा, सारे ही अवगाहना के भेद हमने धारण किए, छोटे से सुस्वनी गोद से लेकर महामत्स्य तक। आगे अभी काल परिवर्तन देखेंगे। देखो जब शास्त्र की बात है उस पर हम विचार करते हैं तो हमारे कहाँ कहाँ हम बड़े, हम कहाँ, क्योंकि इसका एहसास नहीं है ना। हम इतना ही अपने को समझते हैं, जन्म से लेकर अभी तक मैं हूँ, हमने इतना ही अपना अस्तित्व मान लिया है, और शरीर ही मैं हूँ तो सारे दिन रात प्रयत्न उसी के लिए है, उसको कैसा अच्छा लगे, वो लोग कैसा उसको अच्छा समझे, क्या कैसा दिखाना उसको, है ना। क्योंकि और जितना हमारी लाइफ स्पैन है मैक्सिमम समझो 70, 80, 90, तो उस तक मैं कैसा जरा ठीक ठाक रहूं, उसी के आधार से हम अपना सारा प्लानिंग करते हैं। अनादि से हम है अभी अनंत काल के, क्योंकि ऐसा नियम है जो पूर्व काल है, भूतकाल जितना है उससे अनंत काल अभी बाकी, कभी भी आप अनंत काल के बाद भी अगर आप गिनो तो ऐसा ही होगा कि भूतकाल से आने वाला जो भूत भविष्य काल है वो अनंत गुना होता है हमेशा। तो क्या करना चाहिए, वो अनंत काल अभी बाकी है तो कैसे रहना है, दुख में के सुख में। हाँ तो एक बार आत्मलीनता करेंगे, एक बार अपना स्वरूप पहचानेंगे तो मोक्ष मार्ग शुरू होगा, और मोक्ष मार्ग शुरू होने के बाद ये तो नियम से मोक्ष चला जाएगा, फिर संसार में अधिक रुकना नहीं पड़ता, आप चाहो तो भी नहीं, तो अनंत काल तक अनंत सुख में विराजमान हो जाओ। अब काल परिवर्तन करते हैं, देखते हैं, कहिए है कहिए नहीं कहते हैं कोई जीव। अभी ये पहले एक दो लाइन पढ़ती हूँ, ये सारा काल का पहले हम चक्कर क्या है उसको देखेंगे, ये शब्द भी इसमें जो जो आए हैं उसको फिर देखेंगे। कोई जीव उत्सर्पिणी काल का पहला समय विषय उपजा, अपना आयु को पूर्ण करी मुआ, मुआ यानी मर गया। अब पहले तो हमने क्षेत्र की बात की, अब यहाँ काल की बात करते हैं। तो काल का जो अभी यहाँ भर क्षेत्र की अपेक्षा बताया है कि यहाँ काल का जो होता है वो कैसा है, तो उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कहते हैं। क्योंकि यहाँ छह काल क्रम से आते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और फिर उल्टा ऐसा है। तो उतरता काल उसको कहते अवसर्पिंग और उत यानी ऊपर उत्सर्पिंग। तो ये उत्सर्पिनी और फिर अवसर्पिनी, उत यानी ऊपर जाने वाला और फिर अवसर्पिनी, यानी फिर यहाँ हम छठा इसको नहीं कहेंगे, उस सर्पिनी का पहला कहेंगे, तो उसको नाम देते हैं। जैसे हम अवसर्पिनी से कहेंगे तो एक दो तीन चार पांच और छह, और उसी क्रम से फिर यहाँ भी ऐसे छह काल दोनों में। तो ये अभी हम अवसर्पिनी की बात करें, अवसर में पहले काल को किसको कहते हैं हम, उसको कहते सुषमा सुषमा या सुखमा सुखमा। यह उत्कृष्ट भोग भूमि वाला काल। दूसरा जो है वो सुखमा कहो या सुषमा कहो तो मध्यम भोग भूमि का काल। यही भरत क्षेत्र में उस समय मध्यम भोग भूमि जैसी रचना होती। तीसरा काल जो है वो जघन्य भोग भूमि जैसा है, उसको सुखमा दुखमा कहते। चौथा काल जो है, चौथे काल में यहाँ तीर्थंकर होते हैं ना, पहले तीन काल में तो भोग भूमि है, वहां सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु पांचवा गुण स्थान भी नहीं प्रकट होगा, मुनि भी नहीं, तो मोक्ष तो उसकी बात दूर ही है। चौथे काल में यहाँ तीर्थंकर आदि होते हैं, यहाँ से निर्वाण जाना प्रारंभ हो जाता है। तो चौथे काल में अभी उसका नाम क्या है, नहीं दुखमा सुखमा, चौथे काल का नाम है दुखमा सुखमा, पांचवे काल का नाम है दुखमा और छठे का नाम है दुखमा दुखमा। अभी हमारा पांचवा काल चल रहा है, चौथे काल में यहाँ मोक्ष गमन है, पांचवे काल में मुनि अवस्था तक जा सकता है जीव पुरुष जो है वो, परंतु मोक्ष नहीं है। और स्त्री भी पंचम गुण स्थान तक, वो तो कभी भी उसके जो है चौथे में भी श्री पंचम गुण स्थान के आगे चौथे काल में भी वो नहीं जाते। ये तो हमने अवसर्पिनी की बात की। अब उत्सर्पिनी में पहला काल कौन सा होगा, दुखमा दुखमा, फिर दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, फिर सुखमा दुखमा, फिर सुखमा और सुखमा सुखमा। ये उत्सर्पिनी और अवसर्पिनी मिलकर 20 कोड़ा कोड़ी सागर का ये काल है। सागर का माप हमने देखा था कि एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी पल्ल्य होते हैं, और एक पल्ल्य कितना है तो हमने पहले बहुत बार देखा था कि एक पल्ल्य ने वो गड्ढा करना हजार योजन का, उसके डायमीटर वाला और उतना ही डीप, वो गड्ढा करके उसने उत्तम भोग भूमि के जो नवजात मेंढा है ना उसके जो बाल है वो बहुत मुलायम होते हैं। अपने यहाँ का कंपैरिजन करो तो 4096 गुना हमारा जाड़ा है और वहां इतना पतला होता है, वो सारा इसमें माप है। उत्तम भोग भूमि से वो जो मध्यम वाले के वो 8 गुना जाड़ा है, उसके जगने वाले 8 गुना जाड़ा है, ऐसे उसमें बहुत सारे माप उसमें बताए। तो ये जो बाल है उसका छोटे में छोटा टुकड़ा कि जिसका भी और टुकड़ा नहीं कर सकते, इतने बारीक बारीक उसको कहते हैं रोम खंड। ये सारे इमेजिनेशन में करना है। तो ऐसे रोम खंडों से वो खसा खस भर दो वो खड्डा पूरा, और उसमें से जैसे हम वो रोड रोलर चलता है ना उसके ऊपर, तो चक्रवर्ती की सेना चढ़ा उसके ऊपर, तो कैसे बहुत ऐसे सब दब जाएंगे। तो 100 साल के बाद उसमें से एक रोम खंड निकाला, और 100 साल बीत जाए तो दूसरा रोम खंड निकाला। इस तरह से जब वो पूरा खड्डा, खड्डा ही कोई उसी को गर्त कहते या पल्ले कहते, वो पल्ले ने खड्डे की उपमा दी है और उपमा देकर उसका प्रमाण समझाया है, इसलिए इसको पल्ले कहते हैं, इसको ही उपमा मान कहते। जो हम संख्या में बताते हैं एक दो चार हजार लाख करोड़, अब उसको संख्या मान कहते हैं। और ये जो यहाँ उपमा दी है ना खड्डे की, उसमें इतने रोम खंड है, रोज उसको निकालो तो एक जब ये पूरा खड्डा खाली हो जाएगा तब उसको कहते हैं एक पल्ले वर्ष। तो एक पल्ल में उसके भी असंख्यात भाग में असंख्यात करोड़ वर्ष चले गए, इतना पल्ले का प्रमाण बड़ा। तो ऐसे दस कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर होता है। अभी उसमें भी बहुत तीन प्रकार के पल्ले भी है और तीन प्रकार के सागर भी है। तो छोटे में छोटा जो पल्ल है उसको व्यवहार पल्ल कहते हैं। ऐसे असंख्यात व्यवहार पल्लों का एक उद्धार पल्ल होता है और ऐसे असंख्यात उद्धार पल्लों का एक अद्धा पल्ल होता है। और जिस नाम का वह पल्ल है उसी नाम के दस कोड़ा कोड़ी पल्ल लेंगे तो उस नाम का सागर होगा। जैसे व्यवहार सागर, उद्धार सागर और अद्धा सागर। तो ये जो हम कर्म की स्थिति वगैरह मापते हैं वो अद्धा सागर में, जो मैक्सिमम सागर है ना उसमें। ये क्यों मैंने अभी सागर का माप निकाला? तो हमें ये कल्प काल कितना बड़ा है इसको देखना। तो उत्सर्पिनी और अवसर्पिनी मिलकर 20 कोड़ा कोड़ी सागर का काल है। तो हम ऊपर से देखते हैं अवसर्पिनी में उतरता काल। तो ये उतरता काल जो 6 काल है वो मिलकर 10 कोड़ा कोड़ी है। अवसर्पिनी 10 कोड़ा कोड़ी की और उत्सर्पिनी 10 कोड़ा कोड़ी। अब ये 6 जो काल है उसमें पहला काल जो है वो कितना है? 4 कोड़ा कोड़ी सागर, उत्कृष्ट भूमि वाला काल। दूसरा काल जो है सुखमा वाला वो 3 कोड़ा कोड़ी सागर। तीसरा काल है वो 2 कोड़ा कोड़ी सागर। और चौथा, पांचवा और छठा मिलकर 1 कोड़ा कोड़ी सागर का है। तो पांचवा है 21,000 वर्ष का, छठा भी है 21,000 वर्ष का। तो 21 और 21 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ा कोड़ी सागर, इतना चौथा काल है। तो इतने काल में यहाँ 24 तीर्थंकर हुए। और हमारा अभी जो पंचम काल चल रहा है वो 21,000 वर्ष का है। तो ऐसे ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर की अवसर्पिणी है और उतनी ही 10 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्सर्पिणी है। तो अवसर्पिणी के पश्चात उत्सर्पिणी और उसके पश्चात अवसर्पिणी, ऐसे एक काल का चक्र हमेशा चलता रहेगा, अनादि से ही चलता आया है। तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये जो काल का चक्र है ये भरत भूमि में यानी भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में ऐसा ही चलता है। विधेय क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल में जितना परिवर्तन होता है ना शुरू से अंत तक उतना ही होता रहेगा। जैसे आदिनाथ से महावीर पर्यंत जितना यहाँ परिवर्तन हुआ कि पहले कितनी आयु थी, तो 1 पूर्व कोटि या 1 करोड़ पूर्व जिसको कहते, उस दिन पूर्व की आपको पता है ना प्रमाण, 84 लाख × 84 लाख वर्ष कितने होते वो 70,56,000 करोड़ वर्ष। तो इतने का एक एक पूर्व, ऐसे 2 पूर्व, 3 पूर्व, 4 पूर्व, ऐसे करोड़ पूर्व, उतनी मैक्सिमम आयु चौथे काल के शुरू में होती है। अभी ये बाकी भी आयु बता देती हूँ। पहला काल जो हमने देखा था वहाँ उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले की होती है, पहले के अंत अंत तक और दूसरे के शुरू में वो 2 पल्ले की हो जाती है, दूसरे के अंत में और तीसरे के शुरू में वो 1 पल्ले हो जाती है, और वहां से तीसरे के अंत तक वो 1 करोड़ पूर्व की रह जाती है। यानी चौथे में स्टार्टिंग में 1 करोड़ पूर्व की है और चौथे के अंत तक वो 120 साल की हो जाती है। अभी पांचवे में वो घटती 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 पांचवे के अंत तक वो 15 साल की रह जाएगी, 20 साल की, 20 साल की, और छठे काल में 15 साल। हाइट भी कम हो रही है और आहार बढ़ रहे हैं। पहले में तो हर चौथे दिन छोटा बेर होता ना, एकदम छोटा, उतना आहार होता था। फिर वो अल्टरनेट वो बेरे जैसा हुआ और फिर आंवले जितना, और फिर एक बार और फिर दो बार और फिर अभी बार बार। अभी तो कोई उसमें लिमिट ही नहीं ना, उसको क्या कहते वो, तो टपाल की पेटी होती ना, पोस्ट बॉक्स, वो तो 24 घंटा खुला होता है। वैसे उसमें क्या डालते हैं, कितना डालते हैं और कितनी बार डालते हैं उसका कोई कोई माप ही नहीं रहने दी। खाद्य अखाद्य, खाने जैसे और नहीं खाने जैसे सारी चीजें अंदर डाल देते। चलो, तो ये तो काल का परिवर्तन हमने देखा, ये ख्याल में है ना। ये क्यों मैं इतना सारा बता रही हूँ कि जब हम काल परिवर्तन देख रहे हैं अभी इसमें, जैसे द्रव्य क्षेत्र परिवर्तन देखा वैसे काल परिवर्तन में ये बार बार आएगा कि एक कल्प काल बीत गया, फिर दूसरा बीत गया, तीसरा बीत गया, तो वो कल्प काल कितना बड़ा है उसको हमको थोड़ी आइडिया आनी चाहिए। अब यहाँ पढ़ेंगे तो और ज्यादा ख्याल में आएगा। देखो हाँ, समय, अभी समय कितना सूक्ष्म है समय का भी माप देखेंगे। हमें तो सेकंड पता है और सेकंड में भी कुछ हिस्से होते हैं। आजकल हम देखते टीवी पर क्योंकि वो ओलंपिक क्या उसमें चलता है ना, वो घड़ी चलती है उसके सेकंड के भी हजार या 10,000 पास कर देते हैं। एक खगोल शास्त्र वाले जो है दूरबीन से देखते हैं ना, वो स्पेस रिसर्च वाले सारे नासा वगैरह, उनके पास ऐसी दूरबीने हैं तो वो कितना माप सकते हैं, एक सेकंड का अब जो वही भाव कर देते हैं और वो दो प्लैनेट्स में कितना डिफरेंस है मोशन में वो भी निकाल लेते हैं। यानी इतने तक तो अभी तक तरक्की हुई है साइंस, वो उसको कुछ माइन्यूट सेकंड है, कुछ नाम है उसका, परंतु अभी हम एक सेकंड में सैकड़ों आवली होती है और एक आवली में जघन्य युक्ता संख्या कितने समय होते हैं। तो जघन्य युक्ता संख्या का हमने प्रमाण पहले देखा था, पहले हमने परिता संख्या को देखा था। आपको एक बार हमने यहाँ समझाया था, इतना सारा सरसों का ढेर करो, वो अनवस्था कुंड चला का महाशाला का प्रतिशला का महाशाला का कुंड कर दो और वो जो कुंड एक भर गया सरसों से, उसमें से एक एक सरसों एक जम्बूद्वीप में, एक लवण समुद्र में, आगे वाला समुद्र द्वीप ऐसा करते करते डालते जाओ, जहाँ खत्म होगा वहाँ दूसरा नंबर का अनवस्था कुंड होगा, वो फिर से सरसों से भर दो, फिर उसके आगे वाले समुद्र में डालते जाओ, जहाँ अंतिम खत्म होगा वो जितना बड़ा है ना उतना सूची पूरी आउटर डायमीटर लेना पूरा, वो तीसरे नंबर का अनवस्था कुंड वो फिर सरसों से भर दो, वो ऐसे सिगाऊ भर देना, फिर और उसके आगे वो डालते जाना, ऐसे करते करते वो बहुत बड़ा माप हमने यहाँ सारा समझाया था। तो हाँ हाँ, तो वो जो संख्या आएगी अंतिम, एक जब योग ऐसे कुंड पूरे होते हैं, एक बार पूरा होता है तो दूसरे कुंड में एक सरसों डाले चलाका वाले कुंड में, वो भी कुंड पहला कुंड कितना किया था, जम्बूद्वीप कितना बड़ा किया था, लाख योजन का डायमीटर और हजार योजन ऊंडा। तो ऐसे करते 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 ये सारे असंख्य द्वीप समुद्रों की वहां संख्या निकाली थी और उसमें जब अंतिम जो समुद्र हो जो होगा ना सरसों से भरा हुआ, उसमें कितनी सरसों आएगी, वो था जघन्य परिता संख्या। अब ये जो जघन्य परिता संख्या है उसको जघन्य परिता संख्या बार लिखो, जैसे हम चार संख्या चार बार लिखना और आपस में गुणा करना, तो 4 × 4 × 4 × 4 कितने हुए 256 बराबर। वैसे ये जघन्य परिता संख्या नाम की जो संख्या है वो उतनी ही बार लिखना, जघन्य परिता संख्या बार लिखना और आपस में हर एक को गुणा करो, तब जाके जघन्य युक्ता संख्या संख्या आती है। और इतने समय एक आवली में होते हैं और ऐसी सैकड़ों आवली एक सेकंड में होते हैं, तो ये समय कितना सूक्ष्म है। अब ये हम काल परिवर्तन को देखेंगे। कोई जीव उत्सर्पिणी काल का पहला समय विषय उपजा, उत्सर्पिणी के पहले ये उत्सर्पिणी चढ़ने वाला, अब ये पहला समय उपजो, यहाँ वो जन्मा इस समय में, अभी क्षेत्र नहीं लेना है, कहाँ जन्मा कहीं भी जन्म ले दो, उसका जन्म इसी मोमेंट में होना चाहिए। जन्म यानी वो माँ के पेट से बाहर आना, उसको जन्म उसको वो नहीं जन्म, कहीं से मरकर विग्रह गति में से वो अन्यत्र जाता है, वो उसका जो पहला समय है उद्गल परमाणु को ग्रहण करने का, वो उसका जन्म का पहला समय है। कोई जी उत्सर्पिणी काल का पहला समय विषय उपजा, अपना आयु को पूर्ण करीम हुआ, अभी उसका जितनी कोई आयु होगी वो मर गया। बहुरी दूसरा उत्सर्पिणी काल का दूसरा समय विषय उपजा, अभी ये पहले जैसा एक अवगाहना का दूसरा वे तब दिया था जब कभी उसको एक प्रदेश बढ़कर आया था, अब ये इसका दूसरा चांस कब लेना, अब यहाँ मरा, अब ये तो जो बीस थोड़ा कोड़ी सागर में वो कितने बार जन्म मरण करेगा, अब दूसरा कौन सा उसका भाव लेना, कि जब उत्सर्पिणी के ही दूसरे समय में वो जन्मेगा, समझो बाय चांस तो उसके पहले या बाद में जन्मा तो काउंट नहीं करना, तो फिर दोबारा काउंट करने का चांस कब आएगा? 20 कोड़ाकोड़ी सागर के बाद। वो कितनी रेयर पॉसिबिलिटी है कि उसी सेकंड समय में ही वो बिल्कुल दूसरे समय में जन्मना चाहिए। 5-10 समय का भी डिफरेंस होगा तो नहीं काउंट करना, फिर वो उसके 20 कोड़ाकोड़ी सागर चले गए, यानी वो हम 20 कल्पकाल तो माप रहे। हो सकता है कि उसका दूसरे समय में जन्मने के पहले अनंत कोड़ाकोड़ी अनंत कल्पकाल बीत जाए, क्योंकि उसको दूसरे में जब जन्मेगा तभी हम उसको काउंट करेंगे, अन्य समय में जन्मेगा उसको काउंट नहीं करना। ये तो क्या कहते हैं, बहुरी दूसरा उत्सर्पिणी काल का दूसरा समय विषय उपजा अपना आयु को पूर्ण करी हुआ, तो बीच में उसको तो लाइफ चल ही रही ना, जन्म मरण तो चल रहा है, वहां के जन्म मरण अभी काउंट नहीं करना है। जब कभी फिर तीसरे समय में उपजेगा उसी को काउंट करना है, और बीच में अपना तो टाइम तो चला जा रहा है, और एक एक चांस उसको कब मिलता है? 20 कोड़ाकोड़ी सागर के बाद। बाय चांस उसका वो चांस, यानी वो उसका लाइफ ही चालू है या मरा ही नहीं है वो, तो क्या करे वो? वो तो तीसरे जन्म समय में ही जन्मना चाहिए उसको। तो तीसरी उत्सर्पिणी काल का तीसरा समय विषय उपजा तैसे ही मुआ, ऐसे कितना अर्थ करना, ऐसे 10 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण उत्सर्पिणी काल के जेते समय है इनको पूर्ण करे। ऐसे क्रम से एक एक समय में जब जब वो वहां जन्मेगा उस समय में तब उसको काउंट करना। बीच में बहुत बार घूमा उसको तो काल को तो नापना, परंतु वो जन्म को नहीं नापना। ऐसे क्रम से एक एक समय में उपज कर यहाँ अभी उत्सर्पिणी पूरी के लिए, अभी 10 ही कोड़ाकोड़ी सागर पूरे किए, उसके बाद पीछे इसी अनुक्रम से 10 कोड़ाकोड़ी प्रमाण अवसर्पिणी काल के जेते समय है इनको पूर्ण करे। समझे, यहाँ एक एक समय में जन्मना चाहिए उसको बिल्कुल, और जो इमीडिएट यानी अनुक्रम से जन्मेगा उसी भाव को हम पकड़ेंगे, बाकी बीच में जो किए हैं या बीच में इतनी सारी अवसर्पिणी उत्सर्पिणी वो पार करके इनकी चांस ही नहीं आया वहां। समझो उसकी यहाँ तो यहाँ जन्मना था उसको तीसरे समय में, और वो पहले ही जन्मा या बाद में जन्मा, तो उसको तो काउंट नहीं करना है, तो दोबारा उसका चांस आने के लिए एक कल्पकाल और बीत जाएगा। तो हो सकता है कि वो चांस आने के लिए अनंत कल्पकाल बीत जाए बीच में। नहीं नहीं, एक हाथ मिलेगा बाय चांस मिलेगा तो, और कंटिन्यूस मिलने के लिए उसको बीच में कितना जाना पड़ेगा? देख, एक समय में जन्मा तो एक समय में जन्मा तो उसका अगला भाव दूसरे समय में तो नहीं हुआ, ये उसकी लाइफ स्पैन यानी कुछ होगी ना, उसकी मिनिमम अंतर्मुहूर्त तो होगी, यानी उसका दूसरा वहां जन्मने के एडजेसेंट में जन्मने के लिए बीच में कितने जाएंगे? 20 कोड़ाकोड़ी सागर, और वहां जन्मे ये तो बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है।
जरा हमें ये विचार करना चाहिए कि एक सेकंड के अंदर कितने असंख्या मतलब अवली तो सैकड़ों है, असंख्या समय एक अवली में, तो ऐसे एक घंटे में कितने समय होंगे, और एक घंटे में तो कहो एक दिन में कितने होंगे, एक दिन में तो छोड़ो एक साल में तो छोड़ो, यदि कोड़ाकोड़ी सागर वर्ष जो है 20 कोड़ाकोड़ी सागर, तो काल कितना लंबा, और ये क्रम से आने के लिए कितनी कैसी पॉसिबिलिटी है। और इन्होंने जो बताया कि बिल्कुल हमारी कोई मिनिमम जगह में किसी का भी आयु हो तो अंतर्मुहूर्त है, एक श्वास में 18 बार भी जन्मता है उसमें भी काफी समय निकल जाते हैं, तो उसको दूसरा जन्म लेने के लिए और 20 कोड़ाकोड़ी सागर घूमना पड़े। वो हम कथा सुनते हैं कि एक को मोक्ष में जाना था, अंधा था, तो उसको मोक्ष में जाने का एक किले के अंदर घुसना था, तो किले का एक ही दरवाजा था, तो उसको कहा दीवार को हाथ लगाते जाना, दरवाजा लगेगा तो अंदर घुस जाना, तो जैसा दरवाजा आता है नाक खुजलाता है बाल खुजलाता है तो चलता तो रहता है, और दरवाजा निकल गया फिर घूमा। ऐसा यह जीव एक टर्न गया तो 20 कोना कोड़ी खा जाएंगे, दूसरा टर्न गया तो 20 कोना कोड़ी खाएंगे, ऐसे कितने जाएंगे और उसके समय कितने। तो जब कहा जाता है कि द्रव्य परावर्तन से क्षेत्र परावर्तन का काल अनंत गुना है और क्षेत्र परावर्तन से काल परावर्तन का काल अनंत गुना बड़ा है, तब ये जरा सोचने से हमारे ख्याल में आएगा कि ये काल का माप जो है और ये मिथ्या दृष्टि ऐसा कितने सालों से ऐसा जन्म मरण करते करते भटक के आ रहा है। और हम दूसरे की बात नहीं सोचने, ये मिथ्या दृष्टि अरे अपने देखो कि मैं भी आज तक संसार में रख रहा हूँ तो मेरा नंबर कब आएगा, ऐसा सोचना चाहिए ना।
देखो यदि जिस अनुक्रम से उत्सर्पिणी में देखा एक एक समय में, वैसे ही अवसर्पिणी भी एक एक समय में वो जन्म जब जब लेगा और अवसर्पिणी के 10 कोड़ा कोड़ी सागर का काल जन्म लेते 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 पूरा हो जाएगा तो उसके ये जन्म का साइकिल पूरा हुआ। अब सांस मत लेना बीच में, अभी काल परिवर्तन पूरा नहीं हुआ है, जन्म का पूरा साइकिल पूरा हो जाए। एक एक समय में जन्म जन्म करते 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 जब तक वो उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के सारे ही 20 कोड़ा कोड़ी सागरों के समय में एक एक समय में जन्मेगा तब क्या अभी आगे बहुरी, जैसे जन्म की अपेक्षा कया अनुक्रम तैसे ही मरण की अपेक्षा अनुक्रम जानना। कया अनुक्रम के बाद कौमा चाहिए, फिर पढ़ती हूँ। जैसे जन्म की अपेक्षा कया अनुक्रम तैसे ही मरण की अपेक्षा अनुक्रम जानना, यानी पहले जन्म का साइकिल पूरा करने के पश्चात मरण का। ऐसा नहीं लेना कि वो जन्मता रहे भी उसके साथ साथ मरण का भी साइकिल कहीं ना कहीं पूरा होता होगा, यानी ऐसा नहीं लेना कि यहाँ तो जन्मा और यहाँ मरा, यहाँ जन्मा यहाँ मरा, ऐसा नहीं लेना। पूरा जन्म का साइकिल पूरा होने के बाद फिर एक एक समय में मरा उसको फिर इतना ही ऐसे उसी तरह से गिनना उसको। तो इस तरह से जन्म का साइकिल पूरा हो जाए फिर मरण का एक एक समय में साइकिल पूरा हो जाए तब उसका एक काल परिवर्तन पूरा हुआ। और ऐसे काल परिवर्तन हमने कितने बार किया, अनंत बार। तो कौन सा बर्थडे मनाना और कौन सी पुण्यतिथि मनाना, बर्थडे में भी पूरा दिन मनाते हैं, यहाँ एक एक समय में हमने अनंत बार जन्म लिए है और एक एक समय में अनंत बार मरण किए कंटिन्यूस, यानी अनुक्रम से भी एक एक समय में। देखो ये इसको संसार का, ये हमारा जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। एक कोई मरता है तो कितना दुख होता है, और ये हम ऐसे बार बार मरते आए और मरते रहेंगे तब तक यदि अपना स्वरूप नहीं पहचाने, शरीर को ही अपना रूप मानते हैं तो नियम से अगला अगला शरीर मिलते ही रहेगा, क्योंकि शरीर रूप मान रहे ना तो शरीर में ही रहो अनंत काल तक। शरीर रूप मानना छोड़ देने के बाद भी कुछ भाव मिलेंगे, पर अभी वहां मानना छूट गया ना तो वो उसके जन्म मरण का भी अंत आया समझो, हो जाएगा तो गिने चुने भाव रह भी जाएंगे परंतु अभी वो नहीं के बराबर। इन्हें छूटने का मार्ग बहुत आसान है, जितना हम अभी तक घूमे हैं, जितने हमने कष्ट आज तक लिए हैं, तो उसकी तरफ देखते हैं तो ये ऐसा लगता है क्यों नहीं इसमें से हमने कुछ समझा, क्यों नहीं आज तक हमने। इतना सरल मार्ग है मोक्ष का कि अपना जो स्वरूप है उसको बस एक्सेप्ट करना है और कुछ नहीं करना, कोई क्रिया विशेष को नहीं करते, कहते मोक्ष मार्ग है इसमें उपवास करो या ऐसा चलो या उगाड़े पगे चलो, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। वैसे मोक्ष मार्ग में जो जो उसकी क्रियाएं होती है मुनि धर्म की वगैरह वो तो सहज हो जाती है, पहले में पहले कहाँ से शुरू हो जाता है, जिसको धर्म कहा है धर्म का प्रकट करना, तो वितरागता प्रकट करना यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति, यानी अपने स्वरूप की पहचान, जो हमारा असली स्वरूप है उसको पहचानना है और कुछ नहीं करना, बाकी सहज है वो सारे जो जो कुछ अनुकूल उसमें क्रियाएं होती है वो भी सहज होते हैं और उसके जो जैसे भाव होते जिस भूमिका में चौथे गुणस्थान में पांचवे में छठे सातवें में वो भी सहज होते जाते हैं। तो हमारी सारी नजर बाह्य पर ही रहती है, तो धर्म करना चाहता है तो चलो वो कुछ क्रियाएं करता है, मैं भी ये क्रिया करूं, मुझे धर्म हो गया, वहीं पर अटका रहता है। देखो तैसे मरण की अपेक्षा अनुक्रम जाना, पहले समय विषय मुआ, दूसरे समय विषय मुआ, ऐसे मुआ ने मर गया, कल्प काल समय को पूर्ण करी तो यहू सर्व मिला हुआ। काल परिवर्तन जानना, क्या पहले जन्म का साइकिल बाद में मरण का, तो इन दोनों को मिलाकर उसको काल परिवर्तन कहते हैं। तो तब एक काल परिवर्तन पूरा हुआ। अभी ऐसा काल परिवर्तन पूरा होने में क्षेत्र परिवर्तन अनंत बार चले जाते, और ऐसा एक एक क्षेत्र परिवर्तन पूरा होने में पुद्गल परिवर्तन अनंत चले जाते। इसलिए इसी क्रम से हम याद करते ना, द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, फिर भाव बीच में आएगा, फिर बाद में भाव परिवर्तन आएगा। काल परिवर्तन की बात ख्याल में आए ना, उत्तम से कहकर बीच में गाथा उन्होंने कही है, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी समयावली कासु निरवशेषासु जातो मृतस्य बहुशः। जातो यानी जन्म लिया, मृत यानी मर गया, कितने बार, बहुशः बहुत बार, परिभ्रमण काल संसार है। इस तरह से जो काल परिभ्रमण रूप संसार है उसमें वो अनेक बार उसने जन्म मरण किया। देखो नीचे ऐसे लिखा है, काल संसार विषय भ्रमण करता जीव उत्सर्पिणी अवसर्पिणी रूप कल्प काल का समस्त समय तिनकी पंक्ति विषय क्रम से ये महत्व की बात है। हाँ, बीच बीच में जन्म धारण किया उसका काल तो गिनना, परंतु वो भव नहीं गिनना। क्रम से ही बहुत बार जन्म धरिया है और मरण किया है। इस तरह से ये काल परिवर्तन का स्वरूप हमने देखा। अब कहते हैं आगे भव परिवर्तन कहे, वो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन करना, वो न रह गया वहां। आगे भव परिवर्तन कहे है। अब यहाँ कहाँ जन्मा, कब जन्मा, उसकी बात है, कौन सा भाव भव धारण किया है उसकी बात आए। कौ जी नरक गति विषय जघन्य आयु 10,000 वर्ष की धारी ऊर्जा। नरक में कम से कम आयु होती है 10,000 वर्ष, वो भी पहले नरक के पहले पाथले में। नरक में भी लेयर्स है ना, पहले नरक की भी है, दूसरे की भी अलग अलग है, तो उसमें मैक्सिमम ये मिनिमम आयु वहां की 10,000 वर्ष की है। तो वहां से हम चालू करते हैं, तो पहले नरक के सारे भाव गिनेंगे, उसके बाद क्रम से वो जो बातें आएगी वो देखेंगे। तो को जीव नरक गति विषय जघन्य आयु 10,000 वर्ष करी उपजा, उसने उतनी आयु के साथ उपजा, पीछे मरण करी संसार विषय भ्रमण करी तहां ही, क्योंकि नरक से निकलेगा तो मनुष्य या क्लियंट होगा, और फिर जैसे उसके परिणाम हो गए, कोई स्वर्ग में जाएगा, कोई अन्यत्र जाएगा, कहीं भी जाएगा, एक इंद्रिय में भी जाएगा कोई, तो बहुत परिभ्रमण करके जब दोबारा उसी नरक में उतनी ही आयु के साथ फिर वहां जन्मेगा। तो संसार विषय भ्रमण करी तहां ही जघन्य 10,000 वर्ष की आयु को आयु को धारी उपजा। क्या कहा, दोबारा कहा, उतनी ही आयु के साथ वहीं पर उपजा। ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती, 10,000 वर्ष की मिनिमम आयु है, उतनी पूरी होने के बाद कहीं पर अन्यत्र जन्म लिया, क्योंकि नरक का जीव वहीं पर तो जन्मेगा नहीं, फिर बीच में मिनिमम एक भव तो होगा ना मनुष्य अतिरिक्त, और फिर वहां फिर उतनी ही आयु बांधने के लिए उसके परिणाम भी वैसे के वैसे होंगे, तभी तो वो 10,000 वर्ष की आयु बंधेगी, नॉट नेसेसरी की हो सकता है 33 सागर के बांधे या 10,000 और 5 साल ज्यादा बांधे, तो उतनी ही आयु के साथ फिर वहीं पर जन्म लेना पड़ेगा उसको। ऐसे 10,000 वर्ष के जेते समय होई कितनी बार तो जघन्य आयु को ही धारी धारी उपजे और मरे। यही रेयर कितनी पॉसिबिलिटी है कि बीच में अन्य कितने भी भव मिले उसको, नरक के देव के जो कुछ है उसका टाइम तो गिनना है, परंतु वो भव नहीं काउंट करना। कौन सा भव लेंगे, कि जब वो एक बार नरक का 10,000 वर्ष का भोग किया उसको गिनना, दोबारा जब कभी उसको 10,000 वर्ष का ही नरक का भोग मिले वो उसको गिनना, एक समय वाला भी अधिक नहीं गिनना, अभी तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, ऐसे एक सेकंड में कितने जघन्युक्ता संख्या, ऐसे सेकंड के मिनट, फिर मिनट के घंटे, घंटे में दिन, दिन में कितने समय हो गए, एक साल में कितने समय हो गए, 1,000 साल में कितने हो गए, और यहाँ कितने 10,000 साल में समय कितने हो गए, उतनी बार उतनी ही आयु सहित वहीं पर उपजना है। ये तो अभी स्टार्टिंग पॉइंट है बहु परिवर्तन का, एक है ना। देखो 10,000 वर्ष के जैसे समय हुई कितनी बार तो जघन्य आयु को ही धारी धारी उपजे और मरे, पीछे अभी उसके पश्चात कौन से भाव लेना, 10,000 वर्ष और एक समय का आयु को धारी उपजे, फिर बीच में कहीं कहीं भटक कर आएगा, और उतनी ही आयु के साथ उसके जितने समय है 10,000 वर्ष के, उतनी बार उतनी आयु के साथ नरक में ही जन्मना चाहिए, अन्यत्र का अन्य जन्म नहीं, वो नारकी का ही भाव होना चाहिए। तो ऐसे जब पूरा हुआ तब फिर अन्यत्र जाके नरक तिरंश में है, सॉरी तिरंश मनुष्य में जाके 10,000 वर्ष और एक समय की आयु के साथ उग जाए, फिर वो 10,000 वर्ष और एक साल का उसने आयु भोगी उसने, फिर पश्चात अन्यत्र जन्मा, अन्यत्र जन्म मरण करके फिर 10,000 वर्ष और दो समय वाले आयु के साथ वहां उग जाए, क्रम से ऐसे अभी एक एक समय बढ़ती हुई आयु ले गई। ऐसे एक एक समय बचता, चौथी लाइन, अनुक्रम तई उत्कृष्ट आयु मात्र तैतीस सागर पूर्ण करे, क्योंकि नरक नरक में है ना भव परावर्तन में, वो नरक संबंधी भव वो कब कैसे पूरे हो गए, 10,000 वर्ष से शुरू किए थे तो 10,000 वर्ष में एक आयु नहीं है, 10,000 वर्ष के जितने समय है उतनी बार 10,000 वर्ष के साथ ही उठ जा, वो स्टार्टिंग हुआ, और वहां से एक एक समय बढ़ती हुई आयु के साथ, यानी जब जब उसको नरक का भोग मिलेगा, और वो भी कैसा एक समय बढ़ती हुई आयु का, उसको गिनना, बीच में सारे चारों गति के भोग कोई भी है वो नहीं गिनना, परंतु काल को गिनना। ऐसे करते 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 जब मैक्सिमम नरक की आयु कितनी होगी, 33 सागर, तो जब 33 सागर की आयु उसने ऐसे एक एक समय बढ़ते हुए पूरी की, तब उसका नरक भव वहाँ पूरा हुआ परिवर्तन। अभी चारों गति को काउंट करना है, उत्कृष्ट आयु मात्र 33 सागर पूर्ण करे, पीछे तिर्यंश गति विषय, अभी तिर्यंश गति में मिनिमम आयु है अंतर्मुहूर्त की, तो तिर्यंश गति विषय अंतर्मुहूर्त मात्र जघन्य आयु को धारी उपजे, ये जो हमने देखा था ना कि एक श्वास में असद से बाहर, ये जघन्य आयु लभ्य पर्याप्तकों की जो जघन्य आयु है, तो वो जघन्य आयु सहित तिर्यंश में उपजा, तो पूर्ववत अंतर्मूर्त के जैसे समय हुई कितनी बार तो उसमें भी असंख्यात समय होंगे, क्योंकि मिनिमम अंतर्मूर्त छोटे में छोटा अंतर्मूर्त आवली और एक समय है, और हमने देखा था कि मिनिमम आयु जो है वो संख्यात आवली होती है, इसमें देखा था ना हमने संख्यात आवली मिनिमम आयु, तो उसमें कितने असंख्यात बार उतनी आयु के सहित वहां जन्म लेना पड़ेगा। तो तिर्यंश गति में जघन्य आयु जो अंतर्मूर्त है उसके जितने समय है उतनी बार उस अंतर्मूर्त प्रमाण ही आयु को धारी धारी उपजे, यहाँ ऐसा लिमिट नहीं है कि 2 इंद्रिय होना चाहिए, 3 इंद्रिय होना चाहिए, जो कुछ है वो आयु का उसका जो स्पैन है वो उतनी होनी चाहिए। पीछे एक समय अधिक अंतर्मूर्त आयु को धारी उपजे, पीछे 2 समय अधिक अंतर्मूर्त आयु को धारी उपजे, ऐसे एक एक समय अनुक्रम से बत्ते बत्ते उत्कृष्ट आयु का 3 पल्ले पूर्ण करे। तिर्यंश गति में ये 3 पल्ले किसकी होगी आयु, उत्कृष्ट भूमि वाला जो तिर्यंश है उसकी हमने अभी देखी थी ना, वो 3 पल्ले वाली आयु, मिथ्या दृष्टि भी हो ऐसा जरूर नहीं है 3 पल्ले वाला समय दृष्टि होना चाहिए, क्योंकि ये जो परावर्तन या परिवर्तन है वो मिथ्या दृष्टि को उनको ही होते हैं, समय दर्शन होने के पश्चात उनको ये परिवर्तन रूप संसार नहीं रहता, पुद्गल परिवर्तन के भी आधे काल से भी कम रह जाता है उनका काल, तो तीन पल्ले की आयु पूरी करता है तब उसका वो तीर्यंच गति का परिभ्रमण पूरा हुआ। अब वहां से मनुष्य गति की बात। अब मनुष्य गति विषय, तीर्यंच गति की जो अंतर्मूर्त लगाई तीन पल्ले को पूरे करे। अभी मनुष्य में भी जो सम्मूर्छन जीव कहलाते हैं, जिसको लब्धि अपर्याप्त मनुष्य भाव कहते हैं, वो भी अंतर्मूर्त का मिनिमम एक भी पर्याप्ति पूरी होने के पहले ही वो जीव मर जाता है। और ऐसे जो ये मनुष्य भाव जिसको कहा सम्मूर्छन, सम्मूर्छन का ऐसा अर्थ होता है कि माँ बाप के द्वारा उसकी नहीं हुई, यानी गर्भ नहीं उत्पन्न होता, विशिष्ट वातावरण में पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके अपने शरीर रूप को धारण करके वहाँ वो जीव जन्मता है। तो ये सम्मूर्छन मनुष्य जो जो जीव है वो आर्य खंड के स्त्रियों के कांख में, योनि में वगैरह वहाँ उनका जन्म होता है और एक अंतर्मूर्त में मर जाते हैं। हाँ, वो उन्हीं के वही क्षुद्र वो जिसको कहते हैं श्वास के 18वें भाग में ही मर जाते हैं। ये बहुत अल्प, यानी अपर्याप्त जीव होते हैं ना, आयु उनकी बहुत अल्प होती है। तो वहां से शुरू करना मनुष्य गति वाला जीव। तो मनुष्य गति विषय, तीर्यंच गति की जो अंतर्मूर्त कई लगाई तीन पल्ल को पूरे करे। देखो इसमें भी एक बात है, अंतर्मूर्त की जो उसकी आयु है मनुष्य, ये जो क्षुद्र भव है, क्षुद्र भव है ना, तो अंतर्मूर्त में कितने समय है, असंख्या तो है, तो उतनी बार वहां जन्मना पड़ेगा। अभी 2000 सागर, साधिक 2000 सागर में मनुष्य भव कितने मिलेंगे, 48, और उसमें क्षुद्र भव जिसको कहते वो कितने मिलेंगे, 24। तो 24 भव लेने के लिए 2000 सागर का लिमिट है, यानी 2000 सागर में 24 भव से तो ज्यादा नहीं मिलेंगे। और ऐसे भव कितने करने हैं, असंख्यक। तो ऐसे 2000 सागर कितने बार करने पड़ेंगे तब वो चांस आ सकता है कि उतने ही वो वहाँ आयु के साथ जन्म, यानी असंख्यात जो अंतर्मूर्त के समय उतनी बार वहाँ मनुष्य गति में उसको जन्म लेना है सम्मूर्छन मनुष्य के रूप में, तो उतनी बार जन्म कर लेने के लिए ये जो 8 बार, तो 2000 सागर में 8 ही बार उसको 24 बार ही चांस है, तो फिर दोबारा और 24 करके असंख्यात पूरा होने में कितना काल जाए, क्योंकि नॉट नेसेसरी उसको 8 बार मिलता ही है, और नॉट नेसेसरी कि उसको वो मिले ही सम्मूर्छन जी, सम्मूर्छन उसको अन्य भी मिले, स्टार्टिंग तो वहां से करना है, तो उतना हो जाने के बाद एक समय ज्यादा। हाँ, सबको 48 भाव मिलते हैं ऐसी बात नहीं है, किसी किसी को उत्कृष्ट में उत्कृष्ट मैक्सिमम मिले तो की बात है, त्रस पर्याय की बात है। त्रस यानी दो इंजे से पंच इंजे तक के भाव, एक बार उसमें एक इंजे में से उसमें आया जी, त्रस पर्याय में आया, तो अधिक से अधिक वो कितने काल तक त्रस बना रहे, त्रस यानी दो इंजे से पंच इंजे तक, उसमें तीर्यन से मनुष्य देवनार के कोई भी हो, तो अधिक से अधिक 2000 सागर तक, और उसमें मनुष्यों के वो खाली 48 मिल सकते हैं, और मिल सकते की बात, इतने मिले ऐसी बात। तो स्वामी जी कहते ना, हो सकता है तेरे त्रस पर्याय का आखिरी कोई भव हो, नहीं अभी चेता तो क्या है, यानी हो सकता है किसी के 2000 सागर पूरे होते आए और यहाँ समय तो प्राप्त किया, तो फिर वो 2000 सागर कोई नहीं चाहिए, एक एंड में नहीं जाना पड़ेगा, तो फिर तो मार्ग ही बदल जाएगा ना। तो क्या कहते हैं, हाँ, ये जो अंतर्मूर्त वाली मनुष्य की आयु, फिर एक समय अधिक ज्यादा, फिर एक समय ज्यादा, एक समय ज्यादा, यानी माँ के पेट में तो आया परंतु एक घंटे में मर गया, अभी गर्भ होते ही कहीं से आया ना, और उसका तो वहां से काउंट करना है, तो वहां एक घंटा हो या एक दो घंटे हो या तीन घंटे हो, अभी एक ही समय का माप लगाना है, तो ऐसे 9 महीने की कितने समय हो जाएंगे, यानी पेट में मरा ना, अब जन्म के बाद मरना वो तो बात अलग है, ऐसे एक एक समय अधिक 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 करते थे क्रम से लेना, तो अधिक से अधिक कितनी आयु है मनुष्य की भी, तीन पल्ले, तो मनुष्य की भी तीन पल्ले की आयु को पूर्ण करें वो क्रम से, तब ये मनुष्य भव परिवर्तन वहां हुआ। अभी तो नारकी के देखा तीर्यंच का, अभी मनुष्य का, अभी परिवर्तन पूरा नहीं हुआ, भव परिवर्तन पूरा होने के लिए अभी क्या है, देवगति विषय नरक गति की जो 10,000 वर्ष तक लगाई। अभी देवगति में भी मिनिमम आयु 10,000 वर्ष की है, वो किसको होगी, भवनत्रिक में होगी, जंतर आदि जो है भवनत्रिक उसमें ये मिनिमम 10,000 वर्ष की आयु हो, तो उसने 10,000 वर्ष के जितने समय है उतनी बार वहाँ उसने जन्म दिया, स्टार्टिंग तो उसने उससे करना है ना, और फिर बढ़ाते 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 कहाँ तक आए वो, 21 सागर, इसके ऊपर क्यों नहीं, एकावतारी मत कहो, सम्य दृष्टि, सम्य दृष्टि, मिथ्या दृष्टि अधिक से अधिक 90 ग्रेवे तक जा सकता है, वो भी कौन सा, जिसने दिगंबर मुनि दीक्षा धारण करके कोई तप किया है, ऐसा मिथ्या दृष्टि जा सकता है, बिना दिगंबर दीक्षा का इतना वो ऊपर के स्वर्गों में भी नहीं जा सकता, तो है तो जय बिल्कुल मोक्ष के लिए ही पुरुषार्थ कर रहा है, परंतु ये तो उसने अभी शरीर से भिन्नता या उसके अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, तो ऐसे बिना आत्मा के अनुभव अधिक से अधिक 21 सागर की भी आयु मिले तो भी वहां से फिर उसका भी परिभ्रमण नहीं छूटा है, ये उसका भी यहाँ हमने कौन सा परिभ्रमण गिन रहे, भव परावर्तन, भव परिवर्तन चल रहा है ना, तो ऐसे एकाध भव मिले इतना बड़ा और फिर दोबारा वही उसका चलता है। दिगंबर मुनि दीक्षा ली तो ऐसा वो तो सोचता हुआ ना कि मैं धर्म करता हूँ, और वो दूसरे को दिखाने के लिए नहीं करा, उसकी इच्छा तो है मोक्ष प्रकट करने की, परंतु सही दृष्टि अभी नहीं प्राप्त हुई। शास्त्र में ऐसा आता है कि इस जीव ने अपनी बात, इस जीव ने अभी इतने सारे उसने भव परावर्तन और ये सारे क्षेत्र अनुकार परिवर्तन करते आया है जीव, तो मनुष्य वो भी कितने बार मिला होगा, तो इस जीव ने आज तक इतनी बार दिगंबर मुनि दीक्षा ली है कि उसके शिष्य का ढेर करे तो मेरु पर्वत से बड़ा हो जाए, देवगति से, देवगति विषय नरक गति की जो 10,000 वर्ष तक लगाई, 21 सागर पूर्ण करे, एक एक समय बढ़ते 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 हुए आयु उसको मिले तो 21 सागर की मैक्सिमम मिले, वहां तक उसने देवगति उसको मिली, क्यों ऐसा जाते ही मिथ्या दृष्टि जी अनुत्तर अनुदिश विमान विषय उपजे नहीं, अनुत्तर विमान और अनुदिश विमान, ये 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान है, उसमें मिथ्या दृष्टि जीव नहीं जन्मता, ऊपरी के ग्रेवेट पर्यंत ही उपजे, साथ ही 21 सागर ही कहे है, ऐसे भ्रमण करी नरक विषय 10,000 वर्ष प्रमाण जगन्य आयु को धारी उपजे, तब यह सर्व संपूर्ण भव परिवर्तन हो है, वो देव में छोड़ नहीं देना, अभी जो नैवे ग्रेवेट में गया होगा उसके अगला भव में तो इमीडिएट वो तो नरक का पुरुषार्थ तो नहीं करेगा, वहां से तो मनुष्य ही होता है, जा सकता है नरक में, परंतु उसके बाद जब उसको वो 10,000 वर्ष की नरक मिले तब उसका वो साइकिल पूरा हुआ, क्योंकि वहां से हमने शुरू किया था, तो ऐसा ये सारा क्या देखा थी, भव परिवर्तन, मैंने सारे ही भव एक एक कोई भी भव नहीं छोड़ा था जहाँ इसने जन्म नहीं लिया, यानी हमने जो सारे 14 जीव समास वगैरह देखते हैं तो इन सारे ही पर्यायों में हम घूम घूम कर अभी आए हैं मनुष्य में, ये अपना इतिहास है सारा, हम कब कब जन्मे थे, कहाँ कहाँ जन्मे थे और कितने कितने अवगाहना के साथ जन्मे थे, ये सारे देखा है ना, द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन और ऐसे भव परिवर्तन हमने देखा, तो पहले से दूसरा अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना है, क्योंकि काल अधिक अधिक है ना हर एक में, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी कितने रेयर पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वैसे ही अनुक्रम से उसको मिलना चाहिए, बीच में अनुक्रम रहित जो जो मिले हैं उसका तो टाइम गिनना है परंतु उस भव को नहीं गिनना, इस तरह से इसने अनादि का काल, इस तरह से अनेक यानी एक दो नहीं ऐसे अनंत परिवर्तन करते करते आज तक यहाँ तक यह जीव आया कि पता नहीं बस हाँ बहुत काल बिताए, इतना ही कोई एहसास नहीं होता उसका और कोई दुख भी नहीं लगता है क्योंकि हमें तो इससे पूर्व भव की कोई याद है ही नहीं, तो हम इतना ही अपने को समझकर काम चलाते हैं। जब शास्त्र के वही तो देखने के हमको एक चक्षु मिला ना, आगम चक्षु कहलाता है, आगम चक्षु के द्वारा हम अपना ही पास देख रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे काल बिता कर आए। उक्तम च नरक जघन्य आयुष्यात उपरिम ग्रेवे कावसानेषु मिथ्या तो संस्कृत नहीं भव स्थिति भाविता बहुशः। अने मिथ्या तो करी आश्रित जीव ही नरक का जघन्य आयु आदि उपरिम ग्रेवे पर्यंत आयु विषय संसार की स्थिति बहुत बार भोग गई है, यानी ऐसे जो भव परिवर्तन भी उसने बहुत बार किया, एक एक भव में अनंत अनंत बार उसने धारण किए एक भव को। अब भाव परिवर्तन कहिए, अब भाव परिवर्तन समझने के लिए हम कोई जल्दी नहीं, हम बिल्कुल धीरे से समझेंगे क्योंकि इसमें सारे ही नए नाम आने वाले, तो सारे को अर्थ समझ कर फिर उसका कॉम्बिनेशन कैसे होता है और उसमें कैसे क्रम लगाते हैं आज तो हम शुरू करेंगे, फिर कल इसको दोबारा इन डिटेल फिर देखेंगे। इसमें कोई है क्या क्षेत्र या काल परिवर्तन का, डायरेक्ट भाव का ही है ना। हाँ, ये संग्रह के अधिकार में भाव परिवर्तन ही किया है डायरेक्ट। अब इसको शुरू करते हैं। भाव परिवर्तन कहिए है तो भाव परिवर्तन, अब यहाँ जीवों के भाव कैसे कैसे पलटते हैं उन भावों का वर्णन है और उसमें भी अनुक्रम लगाएंगे। जैसे हमने देखा था अवगाहना एक एक प्रदेश से बढ़ती हुई ली थी, जन्म का समय एक एक समय अनुक्रम से लिया था, बीच वाले गिनने नहीं परंतु काल गिनना, वैसे ही भावों में अनुक्रम लगाएंगे। विशिष्ट भाव हुआ तो उसमें अविभाग प्रतिष्ठित मापेंगे या उसके योग स्थान मापेंगे, उसका कषाय की डेंसिटी मापेंगे, तो उसके अगले वाला ही भाव होना चाहिए जब कभी तब मापेंगे, फिर उसके अगले वाला भाव, उसके अगले वाला भाव, तो उस भावों में भी बहुत सारी जो बातें हैं उसको अभी देखेंगे। तो भाव परिवर्तन योग स्थान अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान कषाय अध्यवसाय स्थान और स्थिति स्थान, इन चारिणी के परिवर्तन तय हो है तो प्रथम इनका स्वरूप कहिए है। ये तो चार नाम तो हमें चार फॉरेन लैंग्वेज लगती है, हम देखेंगे उसको क्रम से उसका क्या स्वरूप है। चार बातें कौन कौन सी देखी, पढ़कर बताना आप कौन कौन सी, योग स्थान अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान कषाय अध्यवसाय स्थान और स्थिति स्थान। देखो योग तो नाम आपने सुना है, अब योग स्थान क्या बात है वो बाद में देखेंगे। योग यानी आत्म प्रदेशों का कंपन और उसी समय आत्मा में जो विशिष्ट भाव योग उत्पन्न होता है, कर्म नो कर्म की खींचने की जो शक्ति उत्पन्न होती है उसको भाव योग कहते हैं, और एक्चुअली आत्मा के प्रदेशों का स्पंदन है उसको कहते हैं द्रव्य योग। जैसे द्रव्य कर्म भाव कर्म दो अलग अलग थे, एक पुद्गल में था एक जीव में था, वैसा नहीं है, द्रव्य योग भी जीव का है और भाव योग भी जीव का। द्रव्य योग में एक्चुअल कंपन लेना और भाव योग में उस कंपन के कारण वहां जो शक्ति उत्पन्न होती है कर्म नो कर्म को खींचने की, उस शक्ति को भाव योग में लेना। और उसके स्थान क्या है वो बात आगे बाद में देखेंगे। अनुभाग का अर्थ मालूम है ना, अनुभाग यानी उसका रस फलदान शक्ति। अनुभाग तो कर्म में होता है और अनुभाग बंध यानी उस विशिष्ट अनुभाग के साथ जो बंध होता है कर्मों का, उसके लिए कारणभूत कौन है, जीव के कच्चा कच्चा। देखो बंध चार प्रकार का होता है कर्मों का, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। उसमें प्रदेश बंद यानी कितने नंबर ऑफ परमाणु आते हैं उसको कहते हैं प्रदेश बंद यानी परमाणु की संख्या। दूसरी प्रकृति बंध यानी कौन से प्रकार के स्वभाव वाले परमाणु ग्रहण किए जाते हैं ज्ञानावरण दर्शनावरण मोनी अंतराय वगैरह ये हुई। हाँ उसके स्वभाव के अनुसार आठों कर्म लेते ना तो ये हुई उसकी प्रकृति। स्थिति यानी उस जितने परमाणु लिए वो जीव के साथ कितने काल में काल तक रहेंगे और उसका फल कब मिलेगा उसको कहते उसकी स्थिति। ये तो स्थिति बंद हुआ। और अनुभाग बंद यानी उस कर्म में फल देने की शक्ति कितनी है उसको कहते हैं अनुभाग। अब जो प्रकृति और प्रदेश बंद है उसमें जीव का योग निमित्त है। अलग अलग योगों से अलग अलग क्वांटिटी में परमाणु आएंगे और अलग अलग प्रकृति वाले परमाणु ग्रहण किए जाएंगे। उसमें भी सरकमता होगी ना तो योग कम ज्यादा होने से या शुभ या अशुभ योग होने से उसमें भी फर्क पड़ेगा। अब जो कषाय जो है उसके कारण अनुभाग विशिष्ट क्वांटिटी में उसकी डेंसिटी विशिष्ट होगी। तीव्र कषाय हो गए तो तीव्र अनुभाग होगा और तीव्र कषाय में जो शुभ प्रकृतियां बनती है तो मंद अनुभाग वाले बनेगी। पुण्य करेगा जीव तो पाप प्रकृतियों में मंद अनुभाग होगा और पुण्य प्रकृतियों में अधिक अनुभाग होगा। ऐसे अलग अलग उसमें पड़ते हैं। तो ऐसे जो स्थिति और अनुभाग जो है वो कषायों के कारण बनता है। तो अनुभाग बंद करने के कारणभूत जीव के परिणाम उसको कहेंगे अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान। और स्थिति बांधने के लिए जो जीव के परिणाम है वैसे वो कषाय अध्यवसाय स्थान भी और स्थिति स्थान। स्थिति स्थान यानी अलग अलग स्थिति। अभी किसी कर्म में एक अंतर्मूर्त की स्थिति पड़ती है तो किसी में 70 कोड़ा कोड़ी का करके हमने देखा था ना मिनिमम अंतर्मूर्ति की पड़ेगी और मैक्सिमम 70 कोड़ा कोड़ी की। तो ये जो स्थिति के एक एक समय बढ़ते हुए ये सारे स्थिति के स्थान कहलाएंगे। तो ये पुस्तक में से पढ़ देंगे अभी तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध को कारण ऐसे प्रदेश परिस्पंद लक्षण योग। ये प्रदेश यानी आत्मा के प्रदेश क्योंकि यहाँ प्रदेश बंध भी आया और प्रदेश परिस्पंद भी आया। तो प्रदेश बंध में कर्म परमाणुओं की संख्या लेना और प्रदेश परिस्पंद में आत्म प्रदेशों का कंपन लेना। क्या कहते हैं प्रकृति बंध और प्रदेश बंध को कारण ऐसे प्रदेश परिस्पंद लक्षण योग के जे जघन्यादिक स्थान ते योग स्थान है। अभी ये योगों को नापने का जो कुछ डिग्री होगी तो कम से कम योग वाला फिर अधिक योग फिर अधिक योग ऐसे उत्कृष्ट योग तक जितने उसके भेद होंगे अलग अलग जीवों की अपेक्षा। एक जीव को एट ए टाइम तो एक योग होगा परंतु अलग अलग जीवों में एक कौन सी वेरिएशन है सारे उन सारे जो भेद है जैसे हमने अवधि ज्ञान के भी भेद देखे थे ना जघन्य वाला है फिर थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा थोड़ा ज्यादा वैसे योग में भी जघन्य से लेकर जघन्याधिक यानी जघन्य से लेकर उत्कृष्ट योग तक जितने योगों के सारे जो भेद होंगे तो उसको कहते हैं योग स्थान। स्थान यानी उसके अलग अलग जीवों की अपेक्षा अलग अलग भेद एक एक डिग्री बढ़ती हुई। बहुरी जिन कषाय युक्त परिणाम नीति कर्मणि का अनुभाग बंद हो है इनके जघन्यादि स्थान से अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान यानी अनुभाग का बंद करने में कारणभूत जीव के जो कषाय है जो परिणाम है उसको क्या कहते हैं अनुभाग बंद अध्यवसाय। अब ये ऐसे उसके स्थान यानी क्या जघन्य फिर और एक ज्यादा 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 उत्कृष्ट तो अलग अलग परिणामों के कारण अध्यवसाय बंधेगा तो उसको कहते हैं अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान। पहले कौन सा देखा था योग स्थान यानी योगों के अलग अलग जो वेरिएशन। अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान में अनुभाग बांधने के लिए कारणभूत जो अलग अलग परिणाम है जीवों के भाव है उनके अलग अलग स्थान यानी उनमें जो वेरिएशन होगी अनंत जीवों की अपेक्षा जो कुछ उसमें पॉसिबिलिटी है उसको कहते उसमें उसके स्थान। फिर जीने के ये हुआ अंतिम में बहुरी जिनी कसाय परिणाम तई किसी बंद हो है तिनी के जगन्यादि स्थान से यहाँ कसाय अध्यवसाय स्थान कहे है वहाँ स्थिति बंद अध्यवसाय स्थान भी इन्हीं को कहे है। कसाय के कारण अनुभाग भी बनता है और स्थिति भी बनती है। तो अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान में देखा था हमने कि जिन कसायों के कारण विशिष्ट अनुभाग बनता है उसको अनुभाग बंद अध्यवसाय कहेंगे और उसके जो भेद है उसको स्थान कहेंगे। अब जिनके कारण स्थिति बनती है वो कषाय ही है ना, तो उसको क्या कहना स्थिति बंद अध्यवसाय और उसके भेद है उसको कहना स्थान। तो स्थिति के कारणभूत ऐसे जो कषाय है स्थिति बांधने के लिए कारणभूत कषाय अभी उसमें भी वेरिएशन होगी तो उसको कहना स्थान। तो स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान को ही कषाय अध्यवसाय स्थान कहने आता है। पर ख्याल में रखने के लिए पहला योग स्थान फिर अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान और फिर स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान कहो या कषाय बंधने कषाय अध्यवसाय स्थान। ख्याल में ये तीन क्योंकि इन शब्दों का अर्थ ख्याल में आएगा तो फिर आगे चलकर इनके कॉम्बिनेशन कैसे लेना उसकी बात आएगी। स्थिति बंध से अध्यवसाय स्थान भी इन्हीं को कहिए। बहुरी बंधने रूप जो कर्मणि की स्थिति अब अभी तक तो जीवों के भाव देखे कि स्थिति बंधने के योग्य जीव के परिणाम अब जितनी स्थिति बंधी उसको ले रहे कर्म में कितनी स्थिति पड़ी किसी ने अंतर्मुख पड़ी किसी ने 10 साल पड़ी किसी ने 1000 साल पड़ी किसी ने सागर की पड़ी और दर्शन मुनि की वो मैं जी 70 कोड़ी सागर ये तो स्थिति के अलग अलग भेद है बराबर। और अलग अलग कर्मों में अलग अलग होगी जैसे आयु में जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त होगी उत्कृष्ट तेज सागर होगी ज्ञानावरणी के जगन्य उत्कृष्ट में भेद होगा दर्शनावरण के जगन्य उत्कृष्ट हर एक कर्म के अपना अपना अलग मिनिमम मैक्सिमम होगा वो 8 कर्म के स्थिति स्थान अलग अलग अपने अपने होंगे। देखो क्या कहते हैं बंधने रूप जो कर्मनी की स्थिति किन्हीं के जगन्याधिक स्थान जगन्याधिक यानी जगन्य से लेकर उत्कृष्ट तक एक एक समय बढ़ते हुए स्थिति के जितने सारे भेद है उसको कहेंगे स्थिति स्थान। स्थिति स्थान कहिए इनका विशेष स्वरूप आगे कहेंगे तो जानना। देखो अभी हमने कितने स्थान देखे कौन से जय बहन बोलो योग स्थान हाँ बंध करते ना अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान स्थान यानी उनके भेद जगन्य से लेकर उत्कृष्ट और कषाय को वहाँ अध्यवसाय कहा किसके कारण के लिए किसके लिए अनुभाग बंधने के कारणभूत ऐसे के परिणाम उनको अध्यवसाय कहा ना तो अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान ये दूसरे हुए। फिर स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान उसी को कषाय अध्यवसाय स्थान कहा और अंतिम स्थिति स्थान योग स्थान यानी क्या है कि जीवों का जो प्रदेशों का परिस्पंदन है वो योग है और उसके जितने भेद है वो योग स्थान हुए। जीव के परिणामों में अनुभाग बंधने के लिए कारणभूत ऐसे जो परिणाम है वो अनुभाग बंध अध्यवसाय हुए उनके जो अलग अलग स्थान उसको स्थान कह दिया। कषाय अध्यवसाय स्थान को या स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान को उसमें विशिष्ट स्थिति बंधने के योग्य जो परिणाम है उनको कषाय अध्यवसाय स्थान कहा या स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान कहा। अंतिम क्या है स्थिति स्थान ये तो कर्म में पड़ी ना स्थिति स्थिति योग्य परिणाम तो जीव में हुए और स्थिति कहाँ पड़ी कर्म में। तो ये स्थिति स्थान यानी कर्म में जो अलग अलग स्थिति पड़ती है उसको स्थिति स्थान कहा। अब ये समझ में आने के बाद आगे क्या समझाना चाहते हैं उसकी बात अपने ख्याल में आ जाए। बहुरी यहाँ एक एक स्थिति भेद के बंध के कारण अपने योग्य असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान पाए है। अब ये उल्टा ले रहे हैं। हाँ चौथे से स्थिति बंध कितना स्थिति बंध है, एक अंतर्मूर्त स्थिति बंध है। ये अंतर्मूर्त स्थिति बंध अभी जीव में क्या किससे होता है, स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान जीव में होते हैं। तो अलग अलग कषायों के कारण स्थिति का बंध होगा, तो इतनी ही स्थिति बांधने के कारण भूत कोई एक परिणाम नहीं है। अभी समझो ये रेंज है कषायों की, इतनी कषायों की रेंज है, तो उसमें असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग कषायों के कारण इतनी जघन्य स्थिति बन सकती है। यानी विशिष्ट एक कोई आप एक घंटे की स्थिति ले लो, एक घंटे की स्थिति बांधने के कारण भूत अलग अलग कषाय असंख्यात लोक प्रमाण हो सकते हैं। यथा योग्य असंख्यात लोक प्रमाण कहा, एक ख्याल में लेना, क्योंकि इसको ही हम आगे समझाएंगे कि मिनिमम स्थिति बांधने के कारण भूत परिणामों की रेंज इतनी बड़ी होगी। असंख्यात लोक, अभी देखो एक लोक में कितने प्रदेश है, असंख्यात है ना, असंख्यात उसमें है। और फिर ऐसा एक लोक, दो लोक, तीन लोक, चार लोक, हजार लोक, लाखों लोक, अब्जो लोक, ऐसे असंख्यात लोक, उसमें जितने प्रदेश होंगे असंख्यात। एक लोक में कितने प्रदेश है हमें ना, ऐसे असंख्यात लोक में जितने प्रदेश है उतनी सो संख्या, हमको यहाँ संख्या बतानी है, इतने अलग अलग प्रकार के कषायों के कारण उतनी विशिष्ट स्थिति बन सकती है। मिनिमम स्थिति बांधने के कारण भूत कषाय इतने, अब स्थिति एक समय अधिक हुई तो उतनी स्थिति बांधने के कारण भूत और अलग रेंज होगी कषायों की। देखो यहाँ एक एक स्थिति भेद के बंध के कारण एक एक स्थिति भेद लिया है, यानी एक भेद हुआ ये अंतर्मूल स्थिति वाला, एक समय वाला ये दूसरा भेद हुआ, एक समय और स्थिति वाला ये तीसरा भेद हुआ, एक समय और चौथा भेद हुआ, एक समय और स्थिति बढ़ी गई पांचवा भेद हुआ। ऐसे मैक्सिमम कितनी स्थिति, सत्तर कोड़ा कोड़ी की सागर स्थिति पर्यंत अलग अलग स्थिति के भेद है, और हर एक एक समय के डिफरेंस से जो जो स्थिति बन रही है उस एक एक स्थिति के कारण भूत असंख्यात लोक, असंख्यात लोक अपने अपने अलग अलग कषाय के स्थान है, जिसको स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान कहते हैं। स्थिति बंधी कर्म में और उसके कारणभूत परिणाम जीव में, जिसको स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान कहते हैं। तो एक एक विशिष्ट स्थिति के कारण मिनिमम स्थिति हमने ली अंतर्मूर्त, तो उसके लिए असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग कषायों के कारण वो स्थिति बन सकती है। अब वो स्थिति प्लस एक समय वाली स्थिति हम कंसिडर करते हैं, यह दूसरा स्थान हुआ ना स्थिति का, स्थिति भेद ये हुए, स्थिति स्थान अलग है और स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान अलग है। स्थिति स्थान तो कर्मों की अलग अलग स्थितियों का वर्णन है, तो कर्मों में जब मिनिमम स्थिति पड़ती है उसके कारणभूत असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम, कर्मों में स्थिति मिनिमम प्लस एक समय और अंतर्मूर्त प्लस एक समय पड़ी तो उसके कारणभूत अन्य असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति के बंधन व्यवसाय स्थान हुए।
कारणभूत का अर्थ ऐसा लेना कि मिनिमम स्थिति बांधने के लिए असंख्यात लोक प्रमाण जीव के कषाय हो सकते हैं
अलग अलग,
यानी स्थिति बांधने के लिए कारण होने वाले उसको कारण भूत कहा है। यानी मिनिमम समझ लीजिए कि अभी हम पांच सेकंड लेते हैं, पांच सेकंड की वो तो है बहुत छोटी उसके लिए, लेकिन समझने के लिए तो पांच समय की स्थिति बांधने के लिए असंख्यात लोक प्रमाण, यानी असंख्यात मल्टीप्लाई बाय असंख्यात, इतनी भेद, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण ही असंख्यात है, तो असंख्यात के भी अनेक प्रमाण होते हैं, इसलिए असंख्यात लोक प्रमाण का। तो एक लोक में असंख्यात है, जो असंख्यात की संख्या है वो असंख्यात है, वैसे असंख्यात लोक प्रमाण, तो उतने उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन में जो जीव के जो परिणाम है कचाव के, वो उतने से केवल एक 5 सेकंड वाला स्थिति बंद पड़ेगा, ऐसा समझ लेना। फिर वो अभी वो मैक्सिमम उन्होंने बताया ना वैसा, यानी एक एक भेद के लिए असंख्यात भेद होते हैं कषायों के, तब ये स्थिति बनती है। कारण भूत का अर्थ समझ में वो बनने के लिए निमित्त है, कारण है,
क्योंकि
ये शब्द है ना कारण भूत, ये वगैरह शास्त्रीय शब्द है, समझने में अपने को ये भूत वड़कता है।
जीव में तो भाव करता है जीव, और कर्म में उससे अपने कार्य योग्यता से उसकी स्थिति या उसमें जो कुछ अनुभव वगैरह उससे अपने कारण होता है, परंतु अब यहाँ निमित्त की भाषा, वहाँ कारण भी, निमित्त को कारण भी कहते हैं, तो ये कौन सा कारण है अपने ख्याल में आना चाहिए, ये उपादान कारण नहीं है, निमित्त की भाषा है। जीव अपने परिणाम करता है और कर्म अपने परिणाम करता है, दोनों दो द्रव्यों के परिणाम अपने अपने में होते हैं, वो अपने स्वयं से होते हैं, दूसरे से नहीं होते हैं, फिर भी यहाँ दूसरे से होते हैं ऐसा जो कहना कहा जाता है, वो निमित्त का ज्ञान कराया जाता है, निमित्त से होता है ऐसा नहीं कहना उनको, उस समय कौन सा निमित्त है उसको बताया जाता है। और ये करना नियोग तो सारी निमित्त में ही भाषा आती है उसकी, तो ये हमने शुरू में ही एस्टैब्लिश किया था, जब जब यहाँ जीव करता है ऐसी बात आएगी या कारण होता है ऐसी बात आती है, तब ये निमित्त का कथन है ऐसा समझकर उसको ग्रहण करना। एक दूसरा करेगा, यहाँ एक एक स्थिति भेद के, एक एक स्थिति भेद का अर्थ होता है मिनिमम स्थिति, एक समय अधिक स्थिति, दूसरी समय अधिक स्थिति, एक एक समय अधिक अधिक स्थिति वाले, वो स्थिति का एक भेद कहेंगे। ये दूसरा भेद, तीसरा भेद, चौथा भेद, पांचवा भेद, एक समय अधिक अधिक बढ़ती बढ़ती स्थिति को हम उसको अलग अलग भेद गिनाएंगे, और वो भी हर एक कर्म में अलग अलग भेद गिनाएंगे, हर एक कर्म के भेद अलग होंगे स्थिति के। तो यहाँ एक एक स्थिति भेद के बंध के कारण, ये बंध के कारण है ना, उसमें बांधने में निमित्त से अपने योग्य, अपने योग्य ने उसके योग्य, उस स्थिति के योग्य असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान पाए है, जिसको कषाय अध्यवसाय स्थान भी कहते हैं, यानी विशिष्ट स्थिति बंधने के लिए उसके योग्य जो कषाय के स्थान है वो असंख्यात लोक प्रमाण है, यानी असंख्यात लोक प्रमाण अलग अलग कषाय उतनी ही स्थिति बांध सकते हैं, ये लेना, ये ख्याल में ना। हाँ, बहुरी एक एक स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान विषय, अभी जो स्थिति बंध के योग्य जो परिणाम है उस एक एक स्थान के लिए यथा योग्य असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान पाई है, क्या कहते हैं, हम स्थिति से शुरू करते हैं, विशिष्ट इतनी स्थिति बांधने के लिए उसमें रेंज स्थिति है असंख्यात लोक प्रमाण, एक एक स्थिति के भेद के लिए असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान है। अभी इतने असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है, इसमें स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान में उस एक एक के लिए अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान अपने अपने असंख्यात लोक प्रमाण, तो दूसरे के लिए कितने होगी, तीसरे के लिए कितने, उसके अपने अपने असंख्यात लोक प्रमाण, यानी एक स्थिति बंध इतना हुआ, तो एक स्थिति बंध में असंख्यात लोक प्रमाण तो स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान, और एक एक स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान में असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान, तो इसके अपने अपने अलग अलग असंख्यात लोक, असंख्यात लोक, असंख्यात लोक, तो ये कितने अधिक हो गए इसके लिए, इस हाल में आता ना। अब और एक उसके आगे, और एक एक अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान विषय, ये एक अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान इसके में, इसमें जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग मात्र योग स्थान पाइए है, इसके कारणभूत योग के परिणाम कितने अलग अलग, असंख्यात लोग को मारे। शुरू हमने किस कहा से करे, एक मिनिमम स्थिति हमने ली। अब ये मिनिमम स्थिति बांधने के लिए अलग अलग कौन कौन से हो गए, तो इतनी मिनिमम स्थिति ये हमने फिक्स रखी, तो उसके लिए असंख्यात लोक प्रमाण तो स्थिति बंधा व्यवसाय स्थान, उसमें से एक एक के लिए, एक एक स्थान के लिए असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाव बंधा व्यवसाय स्थान, और उसमें से एक एक स्थान के लिए ये जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाण योग स्थान, यानी इसमें से ये हर एक का कॉम्बिनेशन करेंगे उतनी ही स्थिति के लिए, तो कितने कॉम्बिनेशन हो गए, ये असंख्यात और एक एक हर एक के साथ असंख्यात और इसमें से एक एक के साथ असंख्यात, यानी असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात करेंगे तब उतनी मिनिमम स्थिति के कारणभूत अलग अलग भाव जीवन के हो गए। इसको कल फिर दोबारा रिपीट करेंगे, क्योंकि अभी तो ये हमने पुटअप किया बेस है, अभी तो आगे सारा समझाना है, तब जाके भाव परिवर्तन ख्याल में आएगा थोड़ा सा, अभी तो समय हो चुका है कल इसको। फिर जगत श्रेणी यानी सात राज्य, अभी उसमें कितने प्रदेश हो गए, वो जगत घन होगा। हाँ, असंख्यात लोक है वो, हाँ यानी लोक वो ज्यादा होगा ना लोक। आप प्रश्न पूछ रहे हैं, हाँ भाव परिवर्तन शुरू से लेंगे, क्योंकि ये नए शब्द है ना, उसका मीनिंग ठीक ख्याल में आएगा तो आगे का सारा इजी है फिर। और जैसे हमने प्रमाद के भेद लिए थे 37,500, उसमें कैसा वो परिवर्तन अक्ष परिवर्तन वगैरह, वैसे यहाँ कॉम्बिनेशन कैसे निकालना इसकी बात आएगी। यावानी से जानते सुझे लोकालो तो आनी मस्तक नवो सनावे सहूरु। Thank you.